ओम शांति। थोड़ी पीछे वाली माताएं इधर आ जाएंगी, सामने उठ जाओ पीछे वाली माताएं। भाई भी थोड़े इधर आ जाओ, पीछे से पीछे से उठ जाओ माताएं, उठ जाओ पीछे की, इधर आ जाओ, इधर सामने, मेरे सामने एकदम। सभी को कैसा लग रहा है ज्ञान सरोवर? बहुत अच्छा। सच? भोजन भी अच्छा या घर का चटपटा याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छा है। बैठा दो, बीच में बैठा दो बहने। माताएं फिर वहीं घुस रही हैं, देखो इधर इधर मेरे सामने। हाँ बैठो भाई लोग, बैठो, चलो बैठ जाओ। आज का टॉपिक बहुत ही मोटा नहीं, गहरा है। कर्म करते हुए हमारा अच्छा योग रहे, ये बहुत बड़ी चीज और सुंदर अभ्यास है हमारे इस जीवन का। क्योंकि हमारे लक्ष्यों में एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य है कर्मातीत होना। चाहते हैं सभी? हाथ उठाओ जो चाहते हैं। अब जरा वो हाथ उठाएंगे जो दिल से चाहते हैं। देखो हाथ तो सभी उठाते हैं। दिल से चाहने का अर्थ है क्या? हमें याद रहता है कि हमें कर्मातीत होना है? सोचो। या घरों में रहते, जो सेवाओं में है वो सेवाओं में रहते, कर्मों में बिजी रहते, ये सब भूले रहते हैं, कोई समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं, कोई संबंधों की कड़वाहट में सुख शांति खो देते हैं। मुझे कर्मातीत होना है या बहुत बड़ा पद पाना है? जैसे विद्यार्थियों को ये याद रहता है, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, थोड़े बहुत बुरे संग में इधर उधर भटक जाते हैं, पर जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं स्कूल कॉलेजों में, उन्हें याद रहता है इतने मार्क्स लाने हैं, आगे ये करना है। एक लड़की मिलने आई नाइन्थ क्लास में, मुझे डॉक्टर बनना है, नाइन्थ से कोचिंग शुरू कर रही है। कहा इतनी लगन क्यों? डॉक्टर को तो बहुत परेशानी हो रही है आजकल। कहा नहीं, मुझे तो सेवा करनी है। तो देखो एक लक्ष्य हो जाता है ना मनुष्य का। हम अपने लक्ष्य को निश्चित करें, इम्पोर्टेंट चीज है संगम योगी जीवन में। सभी भाई बहने ध्यान देंगे, लक्ष्य को निश्चित करें। क्या करना है मुझे, क्या बनना है मुझे? ये नहीं संपूर्ण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, कर्मातीत बनना है, ये बात केवल कहने तक न रह जाए। लक्ष्य इस तरह निर्धारित करें कि मुझे रोज इतना घंटा योग करना है, मुझे जीवन में ये धारणा, दो दो तीन तीन ले ले बस, ज्यादा नहीं, ये धारणा अपनानी है। बहुत आत्माओं के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत कहूं या कहूं सभी के साथ, कि कोई एक कमजोरी उनके सारी चीजों को छुपाए हुए होती है, उनमें कई विशेषताएं भी होती हैं और कई और कमजोरियां भी होती हैं, लेकिन उस एक के कारण सारी दबी रहती हैं। किसी को क्रोध आता है, क्रोध करता है मनुष्य, तो बाकी जो महानताएं और कमजोरियां हैं वो उसको भी पता नहीं लगता, न दूसरों को। जिस दिन वो व्यक्ति क्रोध छोड़ने लगता है, सूक्ष्मता से देखेंगे, और उसका क्रोध बहुत छूट जाता है तो उसे पता लगता है और भी कई कमजोरियां हैं। तो कमजोरियों को निकालना एक अच्छी लंबी यात्रा होती है मनुष्य की। अगर किसी को अपनी कमजोरियों पर पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा है तो उनकी सारी कमजोरियां अंदर ही दबी रह जाती हैं और वो अंत में निकलती हैं। अंत में, जैसे कोरोना काल में हमने देखा, जिनके अंदर थोड़ा भी भय था, जैसे उनको कोरोना का पता चला भयभीत हो गए। बात बड़ी नहीं थी लेकिन भय ने उनको मार डाला। उनमें मोह था, हॉस्पिटल में ले गए उनको, मोह बहुत था, कोई नहीं मिलने आ रहा है, आत्मा अत्यंत पीड़ित हो गई। इन दो चीजों से मृत्यु बहुत हुई है। डॉक्टरों को तो केवल इतना पता है वैसे हुई, लेकिन मोह से कोई सामने नहीं है, किसी से दिल का हाल नहीं ज्यादा वर्णन कर सकते, सब बंधा हुआ है, फोन भी मुश्किल से होगा। तो अपनी कमजोरियों के प्रति एक अच्छी दृष्टि रहनी चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इसको इतने समय में निकालना है। ध्यान दें, अच्छे पुरुषार्थी, कमी निकालनी है लेकिन इतने समय में, ये नहीं निकालनी है तो चलती रहे अंत में निकाल देंगे, इससे काम नहीं चलेगा, समय निश्चित करेंगे। तो एक लक्ष्य बनाए सभी, और सभी का एक सुंदर लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा रोज का योग का चार्ट कितना होना चाहिए, बताओ। होना तो 8 चाहिए, वो तो छोड़ दो, परंतु 4 तो होना ही चाहिए। सीधी सीधी बात करें ना, जो नहीं हो सकता उसके बारे में क्यों सोचे। 4 तो होना ही चाहिए। बैठकर कितना और कर्म में कितना, आधा आधा। कुछ कर्मों में करेंगे, कुछ बैठ कर करेंगे। बैठना भी जरूरी है, बहुतों के साथ बैठने की समस्या है। और समस्या इसलिए है, इसलिए नहीं कि समय नहीं होता, समय तो सबके पास बहुत होता है, इसलिए कि योग लगता नहीं है। योग लगता नहीं तो आधा पौना एक घंटा बैठ के करेंगे क्या, तो मन भारी होता है। इसलिए मैं आप सभी को एक छोटी सी बात कह रहा हूं, अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। 10-10 मिनट 4 बार बैठ जाओ। अमृत वेले तो पूरा समय ही बैठना चाहिए, लेकिन 4 बार 10-10 मिनट बैठ जाएं, आपका 1.5 घंटा ही बैठना होगा, बहुत सुंदर अनुभव हो जाएंगे। क्योंकि योग में सुख लेने के लिए एकाग्रता परम आवश्यक है। और इस संसार में, ब्राह्मण संसार में भी, बहुतों का मन बहुत ज्यादा भटक रहा है, बहुत भटक रहा है। बहुतों को तो ये पता नहीं कि वो किधर भटक रहा है। थोड़े जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं उन्हें ख्याल रहता है, मेरा मन इधर जा रहा है, इससे मुझे हटाना है, मेरा मन इस आसक्ति के पीछे जा रहा है, इस व्यर्थ की इच्छा के पीछे जा रहा है, मुझे ठीक करना है। लेकिन जिनका विशेष अटेंशन पुरुषार्थ पे नहीं है, वो केवल शिकायत तो करेंगे, मन बहुत भटकता है, योग नहीं लगता। पर क्यों भटकता है ये उन्हें पता नहीं है। पता होना चाहिए या नहीं, क्योंकि पता ही नहीं होगा तो इलाज कैसा। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है पेट में, अब उसे पता लग गया कि राजमा खाने से बनता है, समोसे खाने से बनता है, और रोज खाते थे दिल भर के, तो छोड़ेंगे ना, तब छूट जाएगा, क्योंकि वो चीज नुकसान करती थी। हमें भी यदि पता हो कि इस तरफ मन भटक रहा है, तो वहां से उसको निकालने के लिए हर मनुष्य पुरुषार्थ करेगा, और करना ही चाहिए। तो सभी को अपनी एकाग्रता को बहुत अच्छा बढ़ाना है। कर्मयोग तो तब होगा जब योग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एकाग्रता को बढ़ाना है, और मैं उसके लिए दो अभ्यास आपके सामने रख रहा हूं। आप सब जानते हैं, वो नई चीज कुछ नहीं है, केवल हमें अभ्यास करना है। मैं एक उदाहरण कई बार दिया है, कई लोग मेरे पास आते हैं, हमारे यहाँ सेवाओं में रहते हैं, एक मास रहते हैं, तो आते हैं कि बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं युवक। मैं उन्हें एक दिन का काम देता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इनमें क्या करने की क्षमता है, ये क्या कर सकते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूं, आज सारे दिन में अंदाज से 1000 बार याद कर जाओ, मैं महान आत्मा हूं। सिंपल कहा, अनुभव नहीं होता, अनुभव छोड़ दो, आज एक दिन अनुभव को विदाई दे दो, केवल याद करना, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा, रटते ही रहना कुछ भी न समझ में आए तो। शुरू करते हैं दोपहर तक, मैं कह देता हूं थोड़ी अच्छी मेहनत करेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आज, जरा अटेंशन देना, 1000 करके ही आना है ऐसे आपको 8 बजे मेरे पास, 8 से 8, 12 घंटे में। दोपहर तक रटते हैं, दोपहर के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगता है, मैं महान आत्मा हूं। शाम आते आते फील होने लगता है कि ये सच है, मैं महान आत्मा हूं, और 8 बजे तक चेहरा चमक उठता है, मेरे पास आते हैं। अब मैं पूछता नहीं कैसा रहा, वो बताते हैं, मैंने कहा आपका चेहरा बता रहा है। सिंपल दो चीज प्रैक्टिस करेंगे आप, पहले 7 दिन मेहनत करके देखें क्या होता है। 2 अभ्यास ले लें, 1, मैं आत्मा मस्तक मणि हूं, और संकल्प कर लें हर घंटे में 5 बार याद कर लेना है, केवल याद कर लेना है। फिर धीरे धीरे मस्तक मणि देखेंगे, अपने मस्तक में चमकती आत्मा, उससे किरणें फैल रही हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। क्लियर है सभी को? बोलो, क्लियर है? कुछ भी इसमें कठिनाई जटिलता कुछ नहीं, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। मन बोर होने लगे, दूसरे दिन तीसरे दिन सोचना, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मैं आत्मा परम पवित्र हूं। और 2 दिन के बाद सोचना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, ऐसे अलग अलग संकल्प ले लेना। दूसरा अभ्यास स्वमान का, दोनों जुड़े हुए हैं, स्वमान आत्मा का ही पावरफुल अभ्यास है। कोई भी स्वमान ले लें आप, 1 ले लें 7 दिन के लिए, या 7 दिन के लिए 7 ले लें, 3 ले लें, और उनका लक्ष्य रख लें कि मुझे हर घंटे में 5 बार याद करना है। 60-70 बार हो जाएगा, ज्यादा भी हो जाएगा, तो एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। तो अभ्यास करेंगे, बिल्कुल सहज है, क्योंकि एकाग्रता परम आवश्यक, परम शब्द सबसे बड़ा है, बहुत आवश्यक तो है ही, परम आवश्यक है। संसार में मन भटकने की समस्या बढ़ती जा रही है, और इससे बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। कल मैं क्लास कराने गया एक जगह, टॉपिक तो बहुत सुंदर था, लेकिन क्लास के बाद जितने भी युवक मिलने आए सभी डिप्रेशन के शिकार थे। माताएं तो नहीं जानेंगी डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के शिकार थे सभी। अवसाद कहते हैं हिंदी में, सीधी भाषा में बहुत ज्यादा मन उदास, जिसमें न खुशी है न शांति है न सुख है न कुछ करने की इच्छा है। डिप्रेशन अवसाद ये बढ़ता जा रहा है। मैंने टीचर बहन को कहा पहले ही बता देते तो डिप्रेशन पे ही कुछ चर्चा करने थे, एक एक को बताना पड़ा। मन भटक रहा है, रोकना अपने हाथ में। ठीक कहा मैंने, रोकना अपने हाथ में, भटकाना भी सच तो यही है अपने हाथ में। अगर हम सारा दिन बातों में रहें, इसकी उसकी, कौन क्या कर रहा है, सबसे जो बड़ा आधार है ना व्यर्थ का, कौन क्या कर रहा है ये जानने की इच्छा पर चिंतन। व्यर्थ की बातों में अगर हमारा समय जाता है तो हम संसार में इस अलौकिक जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए। बहुत बड़ी सेवाएं हमारे सामने आ रही हैं। आप में से कई नए होंगे, बहुतों को पता नहीं है कैसा समय आने वाला है। इतना तो सभी समझ सकते हैं, आज सोच लें अच्छी तरह, विनाश का अर्थ है ये दुनिया खाली हो जाएगी, थोड़े बचेंगे, यही अर्थ है ना विनाश का। जो कुछ आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। आज मैं एक मूल्य रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें बाबा कह रहे थे बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या बढ़ रही ना देश की संसार की, तो बर्थ कंट्रोल, उन दिनों फैमिली प्लानिंग होती थी, बहुत खर्च होता था उस पर, मिनिस्ट्री होती थी एक पूरी, हर शहर में हर टाउन में उसके ऑफिस होते थे, फैमिली प्लानिंग करनी है, बर्थ कंट्रोल करना है, जनसंख्या बढ़ने नहीं देनी है। बाबा कह रहे थे कितना खर्च करती है सरकारें इस पर, बाबा के पास सिंपल प्लान है। अब बाबा वो तो भगवान है, उसके लिए तो विनाश क्या है, खेल सा है, गंदगी बहुत हो गई थी, आग लगवा दी, मैंने आग लगवा दी, सब जल के भस्म हो गए, अच्छी दुनिया आ गई बस। तो बाबा कह रहे थे बड़ी बड़ी अर्थक्वेक्स होंगी, अर्थक्वेक माना भूकंप, सब नीचे चले जाएंगे, जनसंख्या कम हो जाएगी, आप ही चिंता ना करो, खर्च ना करो। तो महाविनाश का एक स्वरूप प्राकृतिक प्रकोप, तो एक झटके में तो नहीं होगा, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, कभी इसका उसका, तो संसार में त्राही त्राही हो जाएगी। आप सभी, हम सभी, चाहे आप गृहस्थ में रहने वाले हैं चाहे समर्पित लोग हैं, सबको बड़े बड़े काम करने होंगे। जो आजकल सरकारों की टीमें बनी हुई है, रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं हिंदी में, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब फेल हो जाएंगे, उनको ही मुश्किलात हो जाएगी, कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हम सबको बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे। कौन से बोलो भाई लोग, बताओ, बड़े काम करने होंगे, नहीं पता भटक तो कोई नहीं, यहां जिंदे वालों को बहुत मदद करनी पड़ेगी। अशांति, दुख, परेशानियां, तड़फन, रोग बहुत बढ़ जाएंगे। हमें वाइब्रेशंस देकर उनको मदद करनी होगी। कौन कौन आप में चाहेंगे ये महान कार्य करना, बस ठीक है, बहुत हो गए, सबकी जरूरत नहीं है, काफी है इतने ही। बात है, सोचते हैं ना फिर इन्होंने भी हाथ उठाया हम भी उठाएं, ये बहुत मेहनत का काम है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, फिर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा। एक बड़ी बिल्डिंग गिर गई, आपके शहरों में शायद बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग ना हो, आजकल आगरा में तो बन गई होंगी, बन गई ना, अब उनमें हजार लोग एक साथ रह रहे हैं, अब वो गिर गई। धरती जब कांपेगी तो पहले ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग धराशाही हो जाएंगी ना। अब कुछ लोग मर गए, कुछ कट गए, कुछ दब गए, किसी की हड्डियां टूट गई, किसी के सिर का फूट गया, ये स्थिति हो जाएगी ना, पत्थर गिरेंगे। उन्हें पूछने वाला वहां कोई नहीं होगा, भगवान को कहेंगे हमें उठा लो। अब वो तो कहेगा मैं पत्थरों के नीचे से कैसे उठाऊं तुम्हें, उठ के आ जाओ मेरे पास, तब तो तुमने मेरी सुनी नहीं थी। तो हम योग के वाइब्रेशंस देखकर उन्हें शरीरों से मुक्त कर सकेंगे। चले अब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है और सभी अभ्यास करेंगे। मैं ग्लोब के ऊपर हूं, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। तो महान कार्य करने हैं तो स्थिति महान बनानी है, विचारों को महान बनाना है और छोटी छोटी बातों से अपने को छुड़ाना है। अच्छा पक्का लक्ष्य बना लें, कर्म करते हुए अलग अलग स्मृतियों में रहना बिल्कुल सहज बना लेंगे आप। लक्ष्य रख सकते हैं बहुत सहज कि मुझे आज सारा दिन ये अभ्यास करना है, और कर्मों में उस एक अभ्यास को थोड़ा थोड़ा भी करते रहें। लेकिन बस समस्या यहां यही आती है कि मनुष्य कर्म करने में इतना बिजी हो जाता है कि बाकी सब कुछ करना भूल जाता है। सबको अनुभव है, माताओं को खूब अनुभव है, किचन में पहुंच गए, ज्यादा काम हो, टाइम थोड़ा हो, आप अकेले ही हो, वैसे अकेले होना अच्छा होता है, मस्ती से काम कर सकते हैं, तो सब कुछ भूल जाता है। अब ये करना, अब ये करना, ये करना, ये करना। सहज भाव से कर्म करना, कर्म को पहले जब मैं ये सब अभ्यास किए तो एक संकल्प रखा था, ड्यूटी को डांस बना दो, आनंद लेते हुए कर्म करो, भिन्न भिन्न तरह के कर्म। अगर मनुष्य अपने को व्यर्थ से मुक्त रखने का अभ्यास करा ले, लक्ष्य बना ले, तो ऐसे अनेक काम होते हैं जिनमें कुछ भी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं रहती। आपको कहीं जाना है, आपको आज बाजार जाना है, सब्जियां लानी है, कपड़े लाने हैं, आपको एक डेढ़ घंटा लगेगा, आपके पास ये समय खाली है या नहीं, बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक अभ्यास लेकर चलें कि मैं घर से निकल रही हूं, बाबा का आह्वान कर लें, एक मिनट योग में बैठ जाएं, बाबा को बुला लें, मेरे साथ चलो, रास्ते में संकल्प कर लें, पैदल जाना है या किसी व्हीकल में बैठ के जाना है, संकल्प कर लो मैं लाइट हाउस हूं, संकल्प कर लो मैं फरिश्ता हूं, संकल्प कर लो मैं बहुत शक्तिशाली हूं, कुछ भी इनमें से, और मुझे वाइब्रेशंस फैलाते हुए जाना है। जिस दुकान पर भी जाना है वहां वाइब्रेशंस देकर आने हैं। एक लक्ष्य के साथ घर से निकल जाओ, 5-7 बार भी आप याद करेंगे तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी। ऑफिस जाना है आपको, उस भाई तो सब जाते ही होंगे अपने काम पर, बहनें भी जाती हैं बहुत, जब घर से चलो बाबा का आह्वान करके चलो, आ जाओ, सिंपली आ जाओ, और देखो बाप दादा आ गए, कभी शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया आ गए, छत्र छाया बन गए, फिर कोई एक संकल्प लेकर घर से चलो, आज ऑफिस में मैं हर घंटे में दो बार याद करूंगा, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। सब आत्माएं बैठी हैं ऑफिस में, मान लो 10 लोग आपके साथ हैं, ये सब आत्माएं हैं, आनंद आएगा आपको, बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा सारा दिन में, कुछ दिन ध्यान देंगे। नेचुरल प्रैक्टिस हो जाएगी, हम भी मुरली चिंतन में लास्ट में एक अभ्यास देते हैं रोज, वो भी आप ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा लग जाए। आप कोई भी 7 स्वमान अपने पास चुन लें, एक स्वमान लेकर कर्म क्षेत्र पर चलें रोज, और कोई एक अभ्यास चुन लें रोज का, उसको करते रहें दिन में कई कई बार, तो योग बहुत अच्छा हो जाएगा। याद रखेंगे, श्रेष्ठ स्मृति में रहना योग है। स्मृति माना बाबा की स्मृति नहीं, जो कुछ बाबा हमें याद दिलाते हैं उसकी स्मृति भी। बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं, बच्चे याद करो, बाबा तुम्हें रजाई देने आया है, तुम राजयोग से रजाई प्राप्त करने वाले हो, अब इसको याद रखना, ये भी योग है। मुरलियों में बहुत आ रहा है आजकल, इसलिए मैं वही बात सुना रहा हूं, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो, ये याद रखना, तुम भगवान के बच्चे बन गए हो, उसको तुमने पहचान लिया है, वो तुम्हारे पास आ गया है, ये याद रखना भी योग है। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, आपके घर में सभी आत्माएं हैं, 2, 4, 5, 7, ये सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। अब ये खेल पूरा हुआ, सबको घर चलना होगा, ये याद रखना भी योग है। तो श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना सहज योग है। बाकी जिसको बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए, वो चलते फिरते काम करते बीच में याद कर लिया करेंगे, सर्वशक्तिवान की किरणें पड़ रही हैं। कभी याद करेंगे, ज्ञान सूर्य सिर के थोड़ा ऊपर है, सम्मुख है, उसकी किरणें पड़ रही हैं, ये पावरफुल अभ्यास हैं। तो भिन्न भिन्न अभ्यास निश्चित कर लें अपने पुरुषार्थ में, अपने जीवन में, तो कर्म योग सहज होगा। क्या फायदा होगा कर्म योग से, आप ध्यान देंगे इस बात पर, कर्म जब मनुष्य करता है तो कर्म का प्रभाव, कर्म के परिणाम का प्रभाव, कर्म में चारों ओर हमारे आसपास जो लोग हैं, जो वातावरण है, उसका प्रभाव, कर्म में उतार चढ़ाव का प्रभाव मन पर पड़ता है। अगर थोड़ा थोड़ा भी कर्म योग का अभ्यास होगा, तो ये कोई भी प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। इसलिए कर्म योग से ही कर्मातीत अवस्था होगी, बिना कर्म योग के कोई कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, पक्का कर दें। नहीं तो कर्म मनुष्य को बांधते हैं। देहभान भी इतना हो गया कलयुग के अंत में आते आते, सब में हो गया, कोई आपकी बात नहीं, सब में, और हर कर्म बंधन बनता जाता है। परिवार भी बहुतों के लिए बंधन बन गए हैं, संबंध भी बंधन बन गए हैं बहुतों के लिए। मैं ठीक बोल रहा हूं या नहीं? बंधन बन गए हैं। कहां परिवारों में बहुत प्यार होता था, अपनापन होता था, बहुत सुखद फीलिंग होती थी। और आज तो आप घर में पहुंचते होंगे तो बच्चे अपने अपने व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फोन पे लगे हुए हैं, किसी को फुर्सत नहीं है किसी से मिलने की, संबंध बिगड़ गए, नाते कुछ और हो गए, तो बंधन बन गए। इसलिए परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। बस एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, बताया तो बाबा ने बहुत बार है और हमने भी उसको रिपीट किया है, 100 बार तो मैंने भी किया होगा, आज फिर लिख लें जिनके हाथ में डायरी पेन है, और इसको अपने सामने लिख के रखेंगे, रोज दृष्टि डाल लेना। एक स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये फॉर्मूला है जीवन का। और स्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से, ये सब बाबा का महावाक्य है पूरा एक। इसलिए बहुतों के साथ उल्टा हो रहा है कि छोटी परिस्थिति आई तो मन की स्थिति को बहुत बिगाड़ लेते हैं, फिर सोचते हैं बाबा इस परिस्थिति को खत्म करो। बाबा याद दिलाता है तुमने स्थिति खत्म कर दी, स्थिति बनाओ तो परिस्थिति भाग जाएगी। बहुत बड़ा रहस्य है इस संसार के लिए ये। जो परिस्थितियों में परवश होके परेशान हो गए उनकी परिस्थितियां जाएंगी नहीं। इसलिए अगर परिस्थितियों से मुक्त होना है तो अपने स्वमान को बढ़ाएंगे, ज्यादा सोचने की आदत को बदलेंगे। बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है, परेशानी समस्या बड़ी नहीं होती, सोचते ज्यादा हैं। कल ही एक बात आई थी, चेहरे पर उसकी जरा भी खुशी नहीं थी भर्ती करने की भी नीचे। बार बार मुझे कह रही मेरे से थोड़ी सी बात कर लो, चलो बताओ क्या है। पति शराब पीता है। अब आजकल तो पतियों का हाल ही ये है या नहीं हाल, पति बताएं सब, दुनिया में यही हाल है या नहीं? यही हाल है। आप में से भी कहीं ने स्वाद लिया होगा, नहीं लिया? जिन्होंने नहीं लिया वो तो अच्छे हैं, लिया तो अब तो ईश्वरीय रस लेना है जीवन में, पूरा हो गया। तो मैंने कहा अरे सभी पी रहे हैं, सरकारें पिला रही हैं दिल भर के, जहां तहां दुकानें खुलती जाती हैं। सबसे सहज लाइसेंस कौन सा मिलता है? शराब का। एक वास्तुकला वाला भाई है हमारे पास, बड़ी हंसी करता है कि घर में वास्तु दोष हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाता है, शराब की दुकानों पर वास्तु दोष काम ही नहीं करता, किसी भी कोने में बना लो तेज ही चलेगी, शमशान में बना लो वहां भी लेने, ठीक कहा आपने, वहां भी लेने पहुंच जाएंगे बहुत लोग, खाने को मिलता हो या ना मिलता हो। तो मैंने उसे कहा ज्यादा नहीं सोचो, बेचारा टेंशन में रहता होगा या आदत वश पीता होगा, अभी तुम अच्छा योग करो, अपने योग बल से ऐसे वाइब्रेशंस फैलाओ कि उसको छूट जाए। कहने से ये काम नहीं होते, और आजकल समय बिगड़ गया है। हम तो देखते थे हमारे यहाँ आबू में अभी तो रास्तों में शराब की दुकान खोल दी है, कई 4-5 खुल गई है, कि जो ऊपर से नहीं ले जा सके, गुजराती लोग बहुत आते हैं और सब जानते हैं वो यहाँ इसी काम के लिए आते हैं, ज्यादातर उधर नहीं मिलती है, लेकिन पीते तो बहुत उधर भी है ना। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तो एक ही लक्ष्य बना लें, जो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना लें वो ही मजे में रहेंगे। और जो इन उलझनों में उलझ गए उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी, परिस्थिति बिगड़ जाएगी, हाल बिगड़ जाएगा, चक्की चलने वाली है, हमें पिसना नहीं है, हमें मुक्त रहना है। बस एक बात और, फिर क्वेश्चन वाले आ जाओ भाई, कौन है? कर्म योगी वही बन सकते हैं जो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त हों। बहुत गहरी बात है ये। जीव का रस बहुत होगा तो बुद्धि उसमें जाती रहेगी, योग नहीं लगेगा। अच्छी तरह जान लें, जरा भी पर चिंतन मन में चलने लगा, किसी दूसरे के बारे में उनकी बुराई दिखने लगी, अवगुणी दृष्टि हो गई, योग टूट ही जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी लगाने के लिए। हमारी जानकी दादी शुरू से कहती थी, हमें उनकी ये बात बहुत भा गई थी। जब बाबा व्यक्त हुए तो वो भी यहां रहती थी बहुत समय, तो कहती थी त्रुटि देखी तपस्या भंग हुई, त्रुटि कमजोरी गलती। फिर कहती थी गलतियां उनकी मुसीबत हमारी। अरे वो गलती कर रहे वो जाने, हमने अपना योग तोड़ दिया, अपनी खुशी खो दी, अपनी शांति खो दी, मुसीबत हो गई ना। तो कर्मेंद्रियों का रस, ये देखने का रस होता है थोड़ा, ये देखने का रस भी न रहे। बहुत कुछ देखना चाहता है मनुष्य। आजकल वो रस मोबाइल रस में बदल गया है, नया रस, जिस रस का पहले ज्ञान नहीं था किसी को भी। मोबाइल रस, व्हाट्सएप का रस, फेसबुक का रस। बहुत सारी माताएं तो मुक्त होंगी इनसे। कौन कौन मुक्त हैं जरा हाथ उठाओ। माताएं बहुत मुक्त रहती हैं, युवक ज्यादा लगे रहते हैं। भाई लोगों में कौन कौन मुक्त हैं? अच्छा, मुक्त ही रहना। इनका प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है, बाकी इनमें तो गंदगी बहुत है। हमारी एक बहन है, बड़ी बहन, विदेश में, वो कहा करती है, भाई जानते हैं कि हरेक ने अपने अपने जेब में एक गुंडा रखा हुआ है। क्लास में ही बोलती थी वो, गुंडे को बंद करो अब। क्योंकि इसमें गंदगी बहुत है। इसलिए जीभ का रस, आंखों का रस, सुनने का रस, ये तीन तीन चार चीजें मुख्य है ना। सुनने से बहुत व्यर्थ चलता है। इन सब से जो अपने को बचाएंगे, बस ये संकल्प कर लें, जन्म जन्म अनेक रस पाए हैं हम, उनके पीछे गए हैं, अब ईश्वरीय रस से अपने को भरपूर करना है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। जो बात मैं शुरू में आपको कह रहा था वो ये अब कह देता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। कोई आ रहे पूछने या पूछेंगे सभा से? आ जाओ यहां जाओ। तो बड़े काम करने हैं, जब वो काम आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा हम उनके लिए तैयार हुए या नहीं हुए। मैं बहुत पहले से कहता था ये बात माताओं को, आपके द्वार पर लोग आएंगे, जैसा प्यासा आ जाए और आप उसे पानी न पिला पाओ और वो मर जाए आपके द्वार पे, कैसा लगेगा? आत्मा पश्चाताप करने लगेगी कि हम पानी देकर किसी के जीवन को भी बचा नहीं सके। आपके द्वार पर आएंगे, हमारे सिर पर हाथ रख दो। फटा जा रहा है सिर, हमें दृष्टि देकर शांत कर दो, हमें अपने घर का पानी ही पिला दो। ये भी कहेंगे अपने पुण्य थोड़े से हमें दे दो। ये सब होने जा रहा है इस सृष्टि पर, इसलिए सभी भाई बहने अपने को तैयार करें। जो योग्य बन जाएंगे उनके पीछे संसार चलेगा, और आप देने वाले बन जाएंगे। देने वालों का संसार में सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो कर्मयोग भी करेंगे, अपने को मुक्त करेंगे, और भट्टी से कुछ अच्छा प्लान बनाकर जाएंगे। हाँ भाई चलो क्वेश्चंस।
भाई सर, एक्चुअली ये ऑनलाइन क्वेश्चन था, मैं उसी से शुरुआत करूंगा। किसी ने पूछा कि आजकल जो जॉब है वो बहुत हैक्टिक है, डेडलाइंस वाले जॉब होते हैं, और वहाँ पे आपको घंटों घंटों काम करना पड़ता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में वैसे स्टेज नहीं बन पाती है बार बार।
हाँ, माताओं ने समझा, बस मैं समझ गया, माताओं ने समझा। थोड़े इंग्लिश के शब्द हैं क्वेश्चन में, आजकल के जो ऑफिसों में काम है बहुत थोड़े भारी हैं, हेक्टिक कहते हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है, लंबा समय करना पड़ता है, मन भी थकता है, तन भी थकता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, सब कुछ थकता है, तो थकान में तो मनुष्य योग भी नहीं कर पाता। इसलिए अब क्या करेंगे, बहुत सारी जॉब ऐसी हो गई हैं, जैसे बैंकों में बहुत सारे काम करने वालों को हटा दिया गया है, संख्या कम कर ली है, एक एक पे लोड बढ़ गया है, जो मैनेजर्स होते हैं 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, दुखी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं नौकरी। आईटी वाले, सीए, सीएस, बड़े बड़े जो पद वाले हैं, बहुत काम करना पड़ता है, निश्चित रूप से थक जाते हैं। कई कन्याएं मेरे पास आती हैं, सीए कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सवेरे 8 बजे भाई जी ऑफिस में जाते हैं, शाम को 9 बजे आती हूँ, उठ के भागती हूँ ऑफिस, आके खा के सो जाती हूँ, ये मेरा जीवन है, क्या करूं। पहले 7 साल पढ़ाई में बहुत मेहनत की, थक गए, नौकरी मिली, तनख्वाह तो 1 लाख मिलती है, लेकिन जीवन का हाल बिगड़ गया है। बहुत हल्का रहकर काम करेंगे, अगर कुछ अच्छे अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़ती जाएगी और आपका 1 घंटे का काम 40 मिनट में होने लगेगा, फिर आधे घंटे में होने लगेगा। ये ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव आप जीवन पर देखेंगे। हल्के रहकर काम करें, हर घंटे में चाहे आप काम को रोक कर 1 मिनट कुछ अच्छे अभ्यास कर लें, जैसे मैं आत्मा देह के द्वारा काम कर रही हूं, बाबा मेरे साथ है, वो करण करावनहार है, उसकी शक्तियां मेरे साथ काम कर रही हैं, 1 मिनट इस फीलिंग में बैठ जाओ, एनर्जेटिक हो जाएंगे, क्योंकि काम करने वाले सब जानते हैं शाम के 6 बज गए हैं, ब्रेन थक गया है, आपको काम करना है, आपकी स्पीड आधी रह जाएगी, भले आप रात के 10 बजे तक काम करें, काम होगा 2 घंटे का ही। इसलिए हर घंटे में बीच में रुक कर अपनी को एनर्जेटिक कर लेना, एनर्जी से भरना ये आवश्यक है, और हो सके तो काम को ऐसा मैनेज करो, ऐसा सेट करो कि कम समय में ज्यादा काम हो जाए।
हाँ भाई साहब, कई बार ये समस्या भी होती है कि जो बीके हैं वो स्वभाव से मीठे होते हैं, तो जहाँ वर्क प्लेस होता है वो लोग उस चीज का, कई लोग बोलते हैं कि फायदा उठाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे युक्ति होती
है? जो मीठे हैं, दुनिया में लोग कहते हैं चींटी आ जाती हैं, ये लेकर कहता है ज्यादा मीठे ना बनो, चींटियां बहुत चिपक जाएंगी आके, लेकिन मीठे तो बनना है। ये समस्या कईयों के सामने आती है ऑफिस में, वो सरल चित्त हैं, काम अच्छा करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो मैनेजर या ऑफिसर जो भी होगा काम ज्यादा देगा, अभी उनका भी ठीक और इनका भी ठीक, ये अच्छा करते हैं, जो अच्छा करते हैं उन्हें ही काम दिया जाता है, लेकिन फिर भी अपनी एक सीमा रखनी चाहिए, जितना आप सहज अपने टाइम में काम कर सकें उतना करें, बाकी कल के लिए रखें, अपने को थकाएंगे नहीं, क्योंकि जो जॉब्स हैं आजकल वो 1-2 दिन की तो नहीं है, रोज ही भारी काम हो तो मन पर भी बुरा असर आता है, शरीर पर भी बुरा असर आ रहा है, ये आजकल बहुत हो रहा है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, इसलिए हल्का भी रखना है, और कहीं कहीं जहां ज्यादा हो जाए आपको ना भी कहनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इस परिस्थिति से गुजरा हूं, यहां तो मुझे सिखाया गया था थोड़ा ना करना भी सीखो, अब मेरे से भी ना होती नहीं थी, अब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कर देता हूं, तो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा ना करना भी सीख लेना चाहिए, ताकि प्रेशर ना आ जाए न शरीर पर, न दिमाग पर, न मन बुद्धि पर।
किसी को सभा में से अगर पूछना है तो माइक है, आप उठ के पूछ सकते हैं, किसी भी भाई बहन को पूछना हो तो। वैसे जैसे आपने बोला कि अगर हम स्मृति रखते हैं तो हमारे कर्म समान का अभ्यास करते हैं, स्मृति रखते हैं तो कर्मों में श्रेष्ठता आने लगती है, लेकिन कभी कभी भूलने की इतना सारा ये जो आज की फर्स्ट लाइफ है भाई साहब, उसमें है ना स्मृति रखना ही भूल जाते हैं हम, बहुत सारी जो बाबा ने पॉइंट बताए हैं वो स्किप हो जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या?
इसके लिए बहुत अच्छी विधि अपनाएंगे कि सवेरे क्लास में जाने से पहले पहले या मुरली के समय के बाद जो कुछ आपको करना है उसकी एक प्लानिंग रोज लिख लेंगे, दो तीन लाइन में लिख लेंगे बस, और एक लक्ष्य बना लें कि मुझे वो लिखा हुआ तीन बार जरूर देख लेना है कर्म क्षेत्र पर, ताकि स्मृति ताजी होती रहे। ये बिल्कुल ठीक बात है कि व्यस्तता या कामकाज का बोझ या कोई परिस्थिति हमें वो चीज भुला देती है जो हम अभ्यास करना चाहते हैं। तो रिमाइंडर, अपने को याद दिलाने वाली कुछ चीजें अपने पास रख लेनी चाहिए। बाबा उदाहरण देते थे, साकार में माताएं आती थी ना यहाँ भी, तो पल्ले में गांठ बंधी होती थी। क्या क्यों गांठ बांधी है? कि ये हाथ को लगेगी ना तो फलानी बात याद आ जाएगी, तो याद करने के लिए गांठ बांध लेते थे। तो ऐसा कुछ साधन अपने पास रख लेना चाहिए जो तीन चार बार सारे दिन में हमें याद दिलाए। और उसमें ट्रैफिक कंट्रोल के जो ये प्रोग्राम हैं ये बहुत सुंदर हैं। ऑफिस में तो सब आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन घरों में जो कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल के समय रुक कर अभ्यास कर लेना चाहिए। मैं तो उन लोगों से सीखता हूँ, मुस्लिम लोगों से, जो नमाजी होते हैं। भाई पांच बार नमाज पढ़नी है, कई लोग शायद ज्यादा भी पढ़ते हैं। ट्रेन में होंगे, टाइम हो गया, वहां भी पढ़ेंगे। मैंने देखा एक बार हमारी ट्रेन अहमदाबाद में 2 बजे पहुंची सवेरे, भीड़ थी, हमसे आगे मुस्लिम लोग थे कम से कम 25। उतरते ही उन्होंने वहीं सामने ही थोड़ी सी जगह में अपनी नमाज का कार्यक्रम प्रारंभ किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो नियमबद्धता बहुत बड़ी चीज है जीवन में। कुछ अगर हमें पाना होता है तो नियमों में अपने को बांधना ही पड़ता है। हम भी कुछ नियम बना लें, उनमें बांधें अपने को, लोग आपको सहयोग करेंगे और उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा कर लेना चाहिए। मुंह उधर कर लेना।
ओम शांति। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा अलग है, पर हम भाई जी से पूछना चाहेंगे कि कर्म योगी रहते हुए जो हमारे पहले के विकर्म हैं या पहले के हिसाब किताब हैं, उनको हम कैसे चुकतू करें, और ये कैसे पता लगेगा कि हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं?
हाँ, ये तो टॉपिक का ही क्वेश्चन है, टॉपिक से बाहर थोड़ा ही है। देखिए, कर्म योग जब हम करते हैं, कई लोगों को ये दुविधा रहती है मन में कि पावरफुल योग से विकर्म विनाश होंगे, साधारण योग से नहीं होंगे, और पावरफुल योग होता नहीं, साधारण योग करते नहीं, तो क्या होगा? इसके लिए बाबा ने शुरू में एक उदाहरण दिया था, मैं वही उदाहरण दे रहा हूं। एक बड़ा टब है आपके पास, उसमें थोड़ा मैला पानी भर गया है। अभी दो तरीके हैं, या तो आप में ताकत हो उसको उड़ेल दो, धो के नया भर दो, या अगर ताकत नहीं है तो नल खोल दो, पानी खोल दो, उसमें क्या होगा, पुराना धीरे धीरे निकलेगा, थोड़ी देर में सब पानी साफ हो जाएगा। तो पावरफुल योग है जैसे बर्तन के गंदे पानी को गिरा कर नया भर दिया, और सहज योग जो बाकी स्मृति स्वरूप है वो है कि हमने नल खोल दिया और धीरे धीरे पानी स्वच्छ हो जाएगा। तो विकर्म विनाश तो सबसे ही होंगे, वो गति फास्ट है, ये स्लो है, हमें दोनों को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि बीज रूप सबसे होता नहीं है, लंबा समय बहुतों से नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, विघ्न कम होते जाएंगे, पहला लक्षण। खुशी बढ़ती जाएगी, संस्कार बदलते जाएंगे, चित्त सरल होता जाएगा, संबंध मधुर होते जाएंगे, और हम अपने को बहुत फ्रेश, बहुत हल्का, जैसे कर्ज उतर जाता है ऐसा अनुभव करेंगे, ये प्रैक्टिकल में फीलिंग होंगी।
ओम शांति। बाबा को सब कुछ सौंपकर हल्के रहने का तरीका क्या है और उसको किस प्रकार महसूस किया जा सकता है, इस पर जो है थोड़ा सा
तरीका तो आपने बता दिया, प्रश्न क्या है? ये तरीका ही तो है, बाबा को सब कुछ सौंप के हल्के हो जाओ।
तो किस प्रकार सौंपा जा सकता
है? बैठो। हाँ। बैठ जाओ, और भी कुछ है? अच्छा बैठो। मन पर बोझ रहता है, मनुष्य के अंदर लंबे काल का जन्म जन्म का मैं और मेरा समाया हुआ है, तो वो बोझ बाबा को देकर भी उस मैं मेरे से मुक्त नहीं हो पाता तो बोझ फिर लौट आता है। इसलिए पहली प्रैक्टिस करनी होगी, मैं और मेरे से मुक्त, मैं की जगह स्वमान और मेरे की जगह मेरा बाबा। इसकी प्रैक्टिस लंबा काल बढ़ाएंगे तो नाता गहरा हो जाएगा, हम बाबा को पहचानते जाएंगे उसमें क्या क्या शक्तियां हैं, और जब हमने उसको अपने मन की कोई बात कह दी तो वो उसमें हमारी मदद करेगा ही, ये हमें विश्वास हो जाएगा। तो ऐसा करके देखेंगे कि सवेरे उठकर योग लगाएं, बाबा के पास पहुंचें, मन का बोझ उसको सौंपें कि ये समस्या है बाबा, हमसे नहीं हो रही, इसको आप संभाल लो, आप ठीक कर दो, और फिर हल्के हो जाएं कि बाबा करेगा, ये संपूर्ण विश्वास हो जाए तो बाबा कोई ना कोई विधि आपके पास भेज देगा। आप ये इंतजार न करना कि बाबा क्या कर देगा, चमत्कार हो जाएगा या क्या। मान लो कोई बीमारी हो गई और डॉक्टर से वो ठीक नहीं हो रही है और आपने बाबा को ये बोझ सौंप दिया कि बाबा ये बीमारी है, डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसा भी नहीं है, अभी आप कुछ करो, तो बस वेट एंड सी, देखेंगे आप एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में कोई व्यक्ति आएगा आपके पास और आपको उस बीमारी से मुक्त करने की विधि बताकर जाएगा। वो बाबा के द्वारा भेजा गया व्यक्ति होगा, वो करने से आप ठीक हो जाएंगे। ये नहीं सोचना बाबा आएगा, कभी आप देखते रहो कौन सी खिड़की से आ रहा है, आया ही नहीं, वो किसी को भेज देगा और मदद कर देगा, ऐसे अच्छे अनुभव होंगे। लेकिन हल्के रहना, इसको अपनी थोड़ी नेचर भी बनानी है, कईयों में भारी होने की आदत हो जाती है।
ओम शांति भाई जी। दो चार बार मुरली पढ़ के भी दिमाग में रहता नहीं है, भूल जाते हैं सब।
तो अच्छा, ज्यादा पढ़ लिया करो। ठीक है, तो क्या करें? सवेरे उठकर, इनका प्रश्न है कि मुरली याद रखने के लिए दो चार बार पढ़ना पड़ता है, अच्छी बात है। वैसे तो जो बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं उन्हें मास्टर भी बार बार रटाते रहते हैं ना, फिर भी भूल जाते हैं, तो मुरली तो पढ़ना अच्छा है। फिर ऐसा कर लिया करो कि एक बार मुरली को अच्छी तरह पढ़कर उसकी 5-6 पॉइंट नोट कर लिया करो, तो हर बार सारी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो सुंदर बातें लगी वो लिख लिया आपने और उसको पढ़ लिया दो मिनट में, तो वो बातें याद रहने लगेंगी। लेकिन एक दूसरी विधि है, सवेरे जब उठो, ध्यान से सुनेंगे, उठते ही, बाद में नहीं, फिर कह रहा हूं, उठते ही पहले 3 मिनट में ही अभ्यास कर लो, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे मुरली बहुत याद रहती है। एक बार हो गया, अब 5 बार ऐसे ही, मैं बुद्धिमान हूं। बुद्धिमान के साथ दूसरा शब्द भी जोड़ सकते हैं, मेरे पास ईश्वरीय बुद्धि है, मेरी मेमोरी पावर स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, मुझे मुरली बहुत याद रहती है। फिर तीसरी बार, चौथी, 5वीं बार, बस ब्रेन खुल जाएगा और आपको अच्छी याद रहेगी। धन्यवाद आपने प्रश्न किया, हिम्मत की, नहीं तो माताएं सोचेंगे क्या पूछो, लोग क्या कहेंगे। आपने बहुत अच्छा किया, आइए
आइए आइए।
ओम शांति। भाई जी मेरा प्रश्न ये है कि लौकिक पढ़ाई करते हुए हम कर्मयोग की स्थिति में कैसे रहे, और मेरा अनुभव है कि जब भी मेरी परीक्षाएं आती है तो मैं बहुत ही डर जाती हूँ, बहुत ही भय वाली स्थिति हो जाती है, और कभी कभार उसमें मैं रो जाती हूँ।
अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने भी। बच्चों का एक क्वेश्चन रहता ही है, एक तो ये कि पढ़ते हुए कर्मयोग कैसे करें। सवेरे आपको हर समय करने की जरूरत नहीं, घंटे में एक बार याद कर लेना, मैं आत्मा मस्तक में हूँ, आंखों से देख रही हूँ, बस। कभी अभ्यास, कभी मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा मेरे साथ है, पांच बार याद कर लिया पढ़ते हुए। कभी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, मुझे भगवान मिल गए। और सभी बच्चों को लगभग एग्जाम के समय, परीक्षाओं के समय डर लगता ही है, कोई रो भी लेते हैं, कोई नर्वस हो जाते हैं। आप रोज सवेरे उठ के नियम बना दो कुछ चीजें याद करने की, उठ के ही। सवेरे उठने का अर्थ ये नहीं आपको 3 बजे उठना है, क्योंकि जो बच्चे हैं छोटी आयु के हैं 15, 16 साल, 18 साल, वो बहुत जल्दी नहीं उठ पाते, रात को बढ़ना होता है। जब भी आप उठो, मान लो आप 6 बजे उठे, उठते ही कुछ बातें याद करना। मैं बुद्धिवान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 4-5 बातें कर लो ऐसी, रोज याद करो, 3-3 बार याद कर लो, तो वो चीजें खुलती रहेंगी और आपका डर भी खत्म हो जाएगा। आप बहुत आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हॉल में जाएंगे और अच्छा दे पाएंगे। ये अभ्यास करना।
वैसे एक क्वेश्चन और था, खासकर जो जैसे कुमारियां होती हैं और जॉब कर रहे होते हैं, तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि अभी तो हम जॉब कर रहे हैं और अनमैरिड रहना है, लेकिन जब हमारी एज हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। कई बार उनकी बुद्धि ऐसी होती है।
बिल्कुल ठीक बात है, कुमारियों की नहीं बड़ी बड़ी माताओं की भी होती है। मेरे मरने के बाद बच्चों का क्या होगा। मैं तो माताओं की इस बात से बहुत हंसता हूँ कि माताओं को कितनी चिंता। मैंने कहा सारे संसार को चलाने की चिंता तुमने ले ली है अपने सिर पे। जो अपने को चलाना जानते हैं वो सबको चला सकते हैं। चिंताएं तो हमारी किसने ले ली, जिनके भविष्य की चिंताएं भगवान ने ले ली हो, सोच लो, उन्हें चिंताएं नहीं करनी चाहिए। कन्याओं की बात तो छोड़ो, उनके उनका जीवन कुछ और होता है और सामाजिक व्यवस्था भी कुछ और होती है। अब पिता बहुत बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, कोई भी अपनी कन्या को घर में रखना नहीं चाहते, अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, ये सब ठीक है। लेकिन अगर अपनी स्थिति बहुत अच्छी है, आप स्ट्रांग हैं, चरित्रवान हैं, तो आप सेफ हैं, भविष्य भगवान के हाथों में है। और यदि हमारा वर्तमान श्रेष्ठ है, यदि हम वर्तमान में बहुत पुण्य करते हैं, अच्छी स्थिति बनाकर रखते हैं, तो हमारा भविष्य तो सुंदर होगा ही। जिन कन्याओं का प्रश्न है उनको मैं कहना चाहूंगा, आप अपनी जिम्मेदारी से बोझिल न होकर भविष्य में मेरा क्या होगा, आप ये सोचो मैं ऐसी स्ट्रांग और ऐसी योग्य बन जाऊं कि मैं अनेकों के भविष्य को सुधारने वाली, सिक्योर करने वाली, उन्हें सुरक्षित करने वाली बन जाऊंगी। ऐसी बहुत कन्याएं बनी हैं जिनकी आयु आज 50 साल है, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, संसार उनके पीछे काम करता है। तो अपने को इतना कमजोर नहीं बनाना है, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं अकेली हो जाऊंगी, बीमार होंगी तो कौन पूछेगा। कोरोना में परिवार साथ थे, बीमार हो गए किसने पूछा, सोच लो। कैंसर हो जाता है, करोड़ों की संपदा है, परिवार सारा साथ है, डॉक्टर भी फुल दिल से जोर लगा रहा है, कुछ नहीं कर पाते, कौन पूछता है। हर एक के कर्म उसे पूछेंगे, हर एक की स्थिति उसकी साथी बनेगी, और भगवान को अपना सच्चा दोस्त बना लो, वो हर जगह आपको मदद करेगा, आपको कहीं भी अकेला नहीं रहने देगा। सच तो ये है, ऐसा समय आ रहा है किसी का जीवन भी सिक्योर नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। सुरक्षित वही होंगे जिन्होंने सर्वशक्तिवान को अपनी छत्र छाया बनाया होगा। न पैसा, न संबंधी, न पति, न बच्चे, कोई आपको मदद नहीं कर सकेगा। मदद करेंगे आपके पुण्य कर्म, आपकी श्रेष्ठ स्थिति और सर्वशक्तिवान। ठीक है
भाई सर, जब ये कर्म योग की बात हो रही है तो जिस आपने दादियों को देखा है, बड़ी दादी को देखा है, उनको जैसे योगी भी देखा, वैसे भी वो कर्म और योग का, दादी का कैसा बैलेंस था, उसका छोटा सा अनुभव।
हमने बड़ी दादी को देखा तो जब हम छोटे थे, हम बाबा के रूम में बहुत जाया करते थे। बाबा के रूम में जाने की प्रथा नहीं थी, जब बाबा व्यक्त हुए शुरू हुआ, धीरे धीरे जाने लगे, अच्छा लगने लगा, फिर वो योग कक्ष में बदल गया। तो दादी कई बार वहां बैठी होती थी, सवेरे बहुत अच्छा योग करती थी, स्वमान उनका बहुत अच्छा रहता था। और जानकी दादी की तो अलग ही बात थी, उसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा तपस्या की थी, हर बात की मनन चिंतन भी बहुत किया था, उनके जीवन में त्याग भी बहुत जबरदस्त था। अगर दादी जानकी के त्याग की आप कहानी सुनो तो हैरान ही रह जाओ कि सच्ची सन्यासिनी थी, महान तपस्विनी, जिसने लक्ष्य रखा। उनके त्याग के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने लिए कुछ भी नहीं, सब यज्ञ के लिए, बाबा के कार्यों के लिए। तो इन सब आत्माओं ने बहुत अच्छा बैठकर भी योग अभ्यास किया और कर्मों में भी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस की। बाबा के साथ के बहुत अच्छे अनुभव होते थे, क्योंकि जब कोई आत्मा इस तरह बाबा के कार्यों में लग जाती है तो उसका साथ बहुत मिलने लगता है, अनुभव बहुत होने लगते हैं। तो बहुत अच्छा सभी ने किया है, इसलिए वो महान बन गए।
वैसे अंतिम क्वेश्चन, अंतिम समय के लिए हम क्या पुरस्कार?
अंतिम क्वेश्चन और अंतिम समय, स्मृति स्वरूप होकर नष्ट मोहा बनना है, अंत में एक की ही याद आए, इसमें तो एक घंटा क्लास हो सकता है। अंत में वही सामने होता है जो लंबा समय हमने किया है। मुख से कटु वचन बोले, अब उल्टी बात सुना देता हूं आपको, किसी ने मुख से कटु वचन बहुत बोले हैं, वो सब सामने खड़े होंगे, पश्चाताप की अग्नि जलती रहेगी। किसी ने दूसरों को दुख बहुत दिया है, सताया बहुत है, वो सब सामने भूत के रूप में खड़े हो जाएंगे, आत्मा पीड़ित हो जाएगी। किसी ने दूसरों का धन खींचा है, छीना है, धोखा दिया है, वो सब पाप कर्म सामने आ जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा योग अभ्यास किया है, ऐसे दीदीपन की बहुत प्रैक्टिस की है, अंत में याद आने लगेगी मैं आत्मा हूं। किसने स्वमान के बहुत अच्छे अभ्यास किए, याद आने लगेगा, ये देह अलग, मैं आत्मा अलग, मैं महान हूं, देव कुल की आत्मा हूं, अभी चलना है। किसी ने बहुत अच्छा अभ्यास किया, मैं इस देवी हूं, अंत में वही स्वरूप बन जाएगा। तो लंबे समय का अभ्यास अंत की स्थिति का निर्माण करेगा। बहुत अभ्यास करना है, स्मृति स्वरूप होकर नष्टो मोहा बनने का, यही अंतिम पेपर होगा। और इसी मोह के कारण इसी चक्की में संसार पीसेगा, मोह की चक्की ही संसार को पीस डालेगी। इसलिए आत्मिक दृष्टि बनाकर अभी से निर्मोही होने का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो सुख पूर्वक जाएंगे। ये याद रहेगा, हमने अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत अच्छे कर्म किए, सब सुखी हों, हम भी सुखी होकर चले अपने परम धाम, और अंतिम यात्रा बहुत सुखद हो जाएगी। ओम शांति। चले अब इसी अभ्यास में बैठेंगे, पूछना है जल्दी पूछो।
ओम शांति भाई जी। कई बार क्या होता है कि योग में बैठते हैं तो साथ में कोई दूसरा सो रहा होता तो नींद आ जाती है हमें भी, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें भाई?
बस उसको जगा दिया करो कि भाई सो नहीं, तुम जगो, हम भी जगेंगे, सहज अभ्यास करना।
थैंक यू।
या उसके पास से उठ के चले जाओ। कई सोने के महारथी भी होते हैं ना, योग में सोते ही हैं पूरा टाइम, थोड़ी जगह बदल लो। अपने अच्छे चिंतन में रहेंगे तो दूसरे की नींद का असर नहीं आएगा। चलो अब मैं आत्मा देह से निकलकर चली परम धाम और बैठ जाएं अपने प्रियतम खुदा दोस्त के पास, उसके वाइब्रेशंस में, सुखद फीलिंग में।